वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह रूम की आयत क्रमांक 50 और 51 की तिलावत सुने।
ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون।
तो ईश्वर की दया के चिन्हों उदाहरण स्वरूप वर्षा को देखो कि वो किस प्रकार धरती को उसके मरने के पश्चात जीवन प्रदान करती है। निश्चय ही ईश्वर मुर्दों को जीवित करने वाला और हर बात में सक्षम है। और यदि हम एक ऐसी हवा भेज दें जिसके प्रभाव से वे उस खेती को पीली पड़ी हुई देखें तो इसके पश्चात वे अकृतज्ञ हो जाएंगे और कुफर अपनाएंगे।
पिछले कार्यक्रम में हवा व वर्षा तथा धरती व धरती में रहने वालों के जीवन व प्रफुल्लता में उनकी भूमिका के बारे में कुछ बातें कही गई थीं। ये आयतें कहती हैं कि हवा व वर्षा ईश्वर के आदेश पर काम करती हैं और उनके परिणाम भी ईश्वर के ही हाथ में हैं। वो अगर चाहे तो वर्षा दया का कारण बन सकती है और शीत ऋतु में मर चुकी भूमि को ईश्वर वसंत की हवा व वर्षा के माध्यम से पुनः जीवित व प्रफुल्लित कर सकता है। और इसी तरह वो चाहे तो तेज व जलाने वाली हवाएं भेजकर सारी फसलों को तबाह कर सकता है और पेड़ों के हरे पत्तों को पतझड़ के पीले पत्तों की तरह धरती पर गिरा सकता है।
मानव जीवन व धरती पर रहने वाली अन्य रचनाओं के जीवन में वर्षा की असंख्य विभूतियाँ हैं। वनस्पतियों व पेड़ों की हरियाली, हवा की कोमलता, झरनों व कुओं की तृप्ति, नदियों का बहना और जलवायु का संतुलन इस महान ईश्वरीय अनुकंपा के केवल कुछ उदाहरण हैं। लेकिन हमें इन प्राकृतिक बातों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि आज के भौतिक संसार से अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाकर मौत के बाद की दुनिया तक ले जाना चाहिए और इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर में ये शक्ति है कि वो प्रलय में मरे हुए लोगों को भी जीवित करे और उन्हें पुनः जीवन प्रदान करे।
इन आयतों से हमने सीखा कि कुरान मजीद वर्षा को ईश्वरीय दया बताता है जो इस धरती और इस पर रहने वालों के जीवन का कारण है।
पानी बरसना और धरती का पुनः जीवित होना प्रलय और मरे हुए लोगों को पुनः जीवित करने में ईश्वर की शक्ति का एक चिन्ह है।
कम क्षमता वाले लोग समस्याओं व कटु घटनाओं के समय अपना धर्म व ईमान छोड़कर कुफ्र में ग्रस्त हो जाते हैं।
आइए अब सूरह रूम की आयत क्रमांक 52 और 53 की तिलावत सुने।
उनके दिल मरे हुए हैं तो आप मुर्दों को अपना निमंत्रण नहीं सुना सकते और न ही बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जब वे मुंह फेरे चले जा रहे हों, और न आप अंधों को उनकी पथ भ्रष्टता से मोड़कर सही मार्ग पर ला सकते हैं। आप तो केवल उन्हीं को अपनी बात सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाएं और वही सत्य के समक्ष नतमस्तक हैं।
ये आयतें लोगों को चार गुटों में विभाजित करती हैं। पहला गुट उन लोगों का है जो विदित रूप से जीवित हैं लेकिन सत्य को नहीं समझ पाते और ईमान नहीं लाते। दूसरा गुट उन लोगों का है जो पैगंबरों के निमंत्रण को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, वे सत्य की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। तीसरा गुट उन लोगों का है जो सत्य को देखने को भी तैयार नहीं है और पद भ्रष्टता में डूबे हुए हैं। चौथा गुट उन ईमान वालों का है जो अपनी आँख और कान से सत्य को समझने और उसे स्वीकार करने के लिए प्रयासरत हैं, और जब सत्य को समझ जाते हैं तो उसके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं।
ये आयतें दर्शाती हैं कि कुरान मजीद की संस्कृति में शारीरिक जीवन व मौत के अतिरिक्त लोगों का आत्मिक जीवन व मृत्यु भी होती है। संभव है कि कोई विदित रूप से मर गया हो लेकिन कुरान मजीद की दृष्टि में जीवित हो, जैसे सत्य के मार्ग में शहीद होने वाले लोग। इसी तरह संभव है कि कुछ लोग विदित रूप से जीवित हों मगर कुरान की दृष्टि में वे मरे हुए हों, क्योंकि वे पथ भ्रष्टता में ग्रस्त हैं और उन्होंने अपने आप को ईश्वरीय मार्गदर्शन के प्रकाश से वंचित कर लिया है।
इन आयतों से हमने सीखा कि यदि मनुष्य में सत्य को प्राप्त करने की तैयारी न हो तो ईश्वर के पवित्र पैगंबर की बात का भी उस पर प्रभाव नहीं होता।
केवल आँख, कान और बुद्धि होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे अधिक महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार करने की भावना है, जो इस बात में सहायता करती है कि मनुष्य सत्य को सुनने व देखने तथा स्वीकार करने की कोशिश करे।
सत्य से हट धर्म व द्वेष तथा उसकी ओर से मुंह मोड़ना मनुष्य को गहरी व खतरनाक पद भ्रष्टता की खाई में धकेल देता है, जहां से वापसी की संभावना बहुत कम होती है।
पैगंबरों व ईश्वरीय नेताओं का दायित्व लोगों को सत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य करना नहीं, बल्कि केवल उनका मार्गदर्शन करना है।
केवल दिल से मान लेना काफी नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी नतमस्तक होना आवश्यक है।
आइए अब सूरह रोम की आयत क्रमांक 54 की तिलावत सुने।
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير।
ईश्वर ही है जिसने निर्बलता से तुम्हारी रचना की, फिर निर्बलता के पश्चात शक्ति प्रदान की, फिर शक्ति के पश्चात निर्बलता और बुढ़ापा दिया। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है और वो जानने वाला व सक्षम है।
चूंकि इस सूरे में मुख्य रूप से ईश्वरीय अनुकंपाओं और एक ईश्वरवाद की निशानियों का उल्लेख है, इसलिए ये आयत आरंभ से लेकर अंत तक मनुष्य की आयु के विभिन्न चरणों की ओर संकेत करती है और कहती है कि माँ के पेट से पैदा होने के बाद से कुछ बरस तक तुम कमजोर व दुर्बल थे, लेकिन किशोरावस्था और युवावस्था में पहुँचने के बाद तुम्हें शक्ति मिली, फिर बुढ़ापे में तुम पुनः कमजोर हो जाओगे। ये सारे चरण ईश्वर ने रखे हैं और इसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है।
यदि सृष्टि मनुष्य के अधिकार में होती तो कोई भी बूढ़ा और कमजोर नहीं होना चाहता, तो शारीरिक शक्ति व क्षमता भी स्वयं मनुष्य के हाथ में नहीं है कि वो उसे बुढ़ापे के लिए बचा कर रख सके।
इस आयत से हमने सीखा कि मनुष्य का आरंभ व अंत दुर्बलता पर है, तो जो दो कमजोरियों के बीच में हो उसे अपनी कुछ दिन की शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसी तरह चूंकि हमारी शक्ति व क्षमता केवल कुछ ही दिन की है, इसलिए हमें उसका मूल्य समझना चाहिए और सर्वोत्तम ढंग से उसका प्रयोग करना चाहिए।
मनुष्य की दुर्बलता व शक्ति के चरण ज्ञान व सक्षम ईश्वर की ओर से एक तत्वदर्शितापूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से बनाए गए हैं।